गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अपनी महिमा आप बताओ है कि ए जीव, जब तू इस ज्ञान को समझ जाएगा फिर तेरी ये स्थिति हो जाएगी कि परमात्मा आपके बिना मुझे कोई दिखाई नहीं देता। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे काग जहाज का इब तक न दूजी ठोरी। अब जैसे समुद्र में समुद्री जहाज के ऊपर कुछ कौवे बैठकर चला जाते हैं, वो कौवा बैठकर चला जाता है इस उद्देश्य से कि जहाज के यात्री आगे चलकर खाना खाएंगे, भोजन खाते हैं तो फिर मैं भी आहार करूंगा। अब जैसे शाम के समय जहाज चला, अतिथि खाना खाकर टुकड़ा फेंक दिया तो कौवा उस लालच में बैठ गया, बैठ जाता है। फिर जहाज रातों रात निकल जाता 200 किलोमीटर और 200-300 किलोमीटर जाने के बाद, 400 किलोमीटर जाने के बाद फिर समुद्र के अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल जहाज या जल। अब पुराने समय की बात है, उस समय क्या होता था कि जो दिशा सूचक यंत्र होते थे वो कई बार डिस्टर्ब हो जाते थे ये चुंबकीय चट्टानों के कारण, वो जो डगमग हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे। और जहाज के चालक भी भ्रमित हो जाते थे, उनको भी कई बार शंका हो जाती थी कि कहीं तेरा दिशा सूचक यंत्र डिस्टर्ब ना हो रहा हो। उसको चेक करने के लिए अपनी दिशा को वो कौवे का सहारा लेते थे, और कौवे में प्रभु ने ऐसा गुण दिया हुआ है कि वो जैसे रात्रि में जहां जिस दिशा से भी चलेगा, चाहे वो दिन में चले चाहे रात में, वो उस दिशा को भूलता नहीं। उसको फिर ये रहता है कि मैंने उल्टा आना है, मेरा घर यहां पर है, मेरा घोंसला यहां पर है। तो जहाज के चालक क्या करते थे, उस जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार देते थे, ऐसे डरा देते थे जोर से, और वो उसको जहाज से उड़ने पर विवश कर देते थे। तो कौवा क्या करता था कि उड़कर वो उस दिशा को चलता था जिस दिशा से जहाज चला था। वो फिर क्या करता है कि आधा किलोमीटर एक किलोमीटर तक उड़ता है वो अपनी उसी दिशा में, फिर वो देखता है कि कितने कोई ठिकाना है, कोई ना बैठूंगा कि जाके। अगर उसने केवल वो जहाज ही दिखाई देता है, एकमात्र स्थान जहां वो डूबने से बच सके, अन्यथा वहां जल ही जल है। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं और बैठता है तो डूब ही जाता है, मरेगा वो। वापस आकर के वो कौवा फिर उसी जहाज पर विश्राम पाता है। अब परमात्मा यूं कहते हैं, जब आप मेरे से परिचित हो जाओगे और इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाओगे फिर तुम्हारी वो स्थिति हो जाएगी। कैसी, कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े जैसे काग जहाज का अब तक न दूजी ठोरे। इस पृथ्वी पर आपको दूसरा ना संत दिखाई देगा ना कबीर जी के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई देगा, आपकी वो स्थिति हो जाएगी। इस स्थान के अतिरिक्त आप जहां भी जाओगे आप 84 लाख योनियों के इस समुद्र में डूबने के स्थान पर जाओगे, वहां आप सीधे ही डूबोगे और ऐसी गलती फिर आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। परमात्मा अपनी महिमा आप पर सुनाते हैं, हमारे लिए आप ही दास बनते हैं और आप ही कह रहे हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो, हे परमात्मा गुरुदेव आप ना भूलना हमारे को, चाहे लाख लोग मिल जाएं और हमसे मेरे जैसे भगत तो आपको लाखों मिल जाएंगे लेकिन मुझ दास को आप जैसा संत नहीं मिलेगा। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना, फिर क्या बताते हैं, तुमरे विसारे क्या बने अब किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय भी ना समाऊं। अब शिव ब्रंच, ब्रंच कहते हैं ब्रह्मा को, शिव विष्णु कहते हैं नारद जैसे इन ऋषियों के इन माछा ना लागू, क्योंकि हम सारा दिन प्रचार करते हैं एक दूसरे को बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कंप्लीट गॉड नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं है। नारद जैसे ऋषियों को भी हम कहते हैं ये ज्ञानी नहीं थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। अब भाई इन नाम कैसे सुहावेंगे, एक आंख भी ना सुहावे हम तो, इनकी तो आंख में कुणक बन गए। और हे परमात्मा तेरी आड़ ना रही तो ये गढ़ देंगे हमने, अगर आपकी शरण मुझे ना रही तो ये फिर मुझे सीधा करेंगे, तो इब आप नो भी आपसे दूर नहीं हो सकते हम, क्योंकि सत्य का बेरा पट गया। अब हम इनके गुण तक गा नहीं सकते, हाँ इनको बुरा नहीं बता सकते क्योंकि हमें इतना ज्ञान हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन इनसे हमारा काम चल रहा को नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, आस्था रह जाती है, उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की गुणों से परिचित होने के उपरांत इन निमन सत्र के भगवानों में आपकी उसी ही आस्था रह जाएगी। अब कितना प्यारा उदाहरण दिया पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी ने कि जैसे पहले क्या होता था, पुराने समय में सतयुग त्रेता द्वापर तक ये ट्यूबल टेबल नहीं थे, ना सिंचाई की नहरें थी, वहां तालाबों पर जनसंख्या कम होया करती, वो तालाबों के ऊपर आश्रित रहते थे, घने धन जोड़नी आदमी ना थे, अपना सिंपल सारा करते खाया कुमाया घना धन इकट्ठा कराया करते, इसलिए वो तालाबों का झीलों का सहारा लेकर के वहां गांव के गांव बस जाया करते थे। अब जैसे कोई छोटे तालाब के ऊपर आश्रित होकर वहां रह रहा है, परिवार उसके रह रहे हैं, और वहां से क्या होता, उस तालाब से ही तो पीने का पानी लेते, उसी से पशुओं को पालते, उसी से कुछ सिंचाई भी करते थे, और वो छोटा जलाशय जिसमें एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो जल समाप्त हो जावे, सूख जावे, और उस पर आश्रित वो परिवार भी, वो जितने व्यक्ति थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यानी वर्षा होगी तो वो फिर भर जाता है, एक वर्ष काम और चला देता है। इसी प्रकार उस जो छोटे तालाब पर आश्रित परिवार है यानी वो व्यक्ति है, उसको कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए, झील जिसकी 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो उस व्यक्ति ने वो जलाशय मिल जाए, वो बहुत बड़ा झील लेक, तो फिर उसकी श्रद्धा उस छोटे तालाब में जितनी रह जाती है, अंडरस्टूड है, कहने का भाव यह कि उसमें उस छोटे तालाब बुरा नहीं है लेकिन वो पर्याप्त नहीं उसके जीवन के लिए, वो कभी भी धोखा दे सकता है, वो सफिशियंट नहीं है। और वो बड़ी झील मिल गई तो 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त नहीं हो सकता। तो फिर उसकी श्रद्धा उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसने त्याग कर वहां पर पहुंच जाएगा, वो फिर उस तालाब के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। लेकिन तालाब बुरा नहीं है, जल उसमें भी है, लेकिन वो थोड़ा है, पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म ये बुरे नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने तो जन्म और मृत्यु का रोग कटाना है, हमने तो सदा के लिए मोक्ष प्राप्ति करनी है, लेकिन इन भगवानों की साधना से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, कर्म का दंड नहीं कट सकता, दुख निवारण नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कर्म करोगे वैसा फल ही ये दे सकते। वो केवल परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है जो बनारस में जुल्हा बनकर आए थे, वही परमात्मा है जो पूर्ण मोक्ष देगा, हमारे सब पाप कर्मों के दंड को समाप्त करेगा और हमें सुख देगा, मोक्ष देगा, पूर्ण मोक्ष देगा। परमात्मा क्या बताते हैं, अपनी महिमा आप ही गाया करते हैं, आप ही सुनाते हैं। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जिसकी भक्ति करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा, उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने किस प्रकार हमें समझाने की चेष्टा की है। सुरत नरत से परखन आवे है महबूब सरोवा वो, द्वार बार घर छाड़ गए हैं जाए बसे वन खोआ वो। अब प्रथम तो उस परमात्मा का ज्ञान नहीं, प्रथम तो वो परमात्मा है कौन, किसकी भक्ति हमें करनी चाहिए, वो हमें प्राप्त वो ज्ञान नहीं। और उसके उपरांत फिर हम जैसा भी थोड़ा बहुत ज्ञान सदग्रंथों में था वो समझ सके नहीं, वो साधनाएं गलत करते रहे। बेख बनाए बहे बहुरंगी कीना बोत अबो आवो, बेख बनाए बने बहुरंगी कीना बोत अबो आवो, कामी क्रोधी बंग मंझारा छड्डा लोभ ने मोहावो। पिता विवेक अक्षमासी माता जिन दूर किया दिल द्रोवा वो, मांड्या खेत नेत जस गाऊ सतगुरु पकड़ा लोवा वो। 14 भवन गवन सब छूटे दिल ही अंदर जोया वो, है निज धाम दर्श दिल माही भरम करम सब खोया वो। अब सिज्जा अदर सिंहासन अवगत तुरिया पद में सोया वो, अनहद तारी लगी हमारी अजु अकल से धोया वो। सतगुर दानी मिले बिनानी बीज अभय पद बोया वो, दिव दृष्टि खुली हमारी ही सार शब्द से टोया वो। टोया माने ढूंढा, खोजा, उस परमात्मा को सार शब्द से प्राप्त किया। दिव दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया वो, दास गरीब गायत्री लापी शीश पीट जम रोया वो। ओए होए, कहते हैं जब हमें ये सतनाम सार नाम मिल गया ना, अब वो काल फिर शीश पीट पीट कर रो है कि ये तो गए मेरे हाथ ते, ये तो निकल गए मेरे ते। दिव दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया वो, गरीब दास वो गायत्री लापी शीश पीट जम रोया वो। जम माने काल। अब कौन सी गायत्री लापी, इस परमात्मा कबीर जी की महिमा रूपी गायत्री का गुणगान हमने शुरू कर दिया, अर्थात इस यथार्थ मंत्र का जाप शुरू कर दिया ना, कहते फिर वो काल रोया सिर पीट का किए तो गए मेरे आस्ते। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लग सब देवन पति देवा वो। वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर सब भगवानों का भगवान है, वो कबीर परमात्मा है। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जब तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा से और पूरे संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से सभी कर्मों से जीव परिचित हो जाता है तो केवल वो जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। गीताजी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि गीता ज्ञान दाता करा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा तत्ब्रह्म उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आठवें श्लोक के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा परमात्मा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन सा है जिसके विषय में आप बताते उसकी शरण में जा और उसका ज्ञान होने के बाद फिर जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता या कि किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कौन है, वो रब कौन है, वह रब कौन है। आठवें अध्याय के गीता जी के तीसरे मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1-4 में और 16 और 17 में स्पष्ट किया है, तीन भगवान बताए, जैसे तीन परमात्मा बताए, ब्रह्म सरब्रह्म सरपुरुष, अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा। इन दोनों के लोकों में जीव भी नाशवान, इनका शरीर नाशवान, प्राणियों का, इनका भी, इन भगवानों पुरुषों का भी, भगवानों का भी जीव शरीर नाशवान, लेकिन जीव आत्मा सभी की अमर ही होती है, गधे की भी कुत्ते की। अब 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, वो उत्तम भगवान श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जो तीनों लोकों प्रवेश करके है, ये लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा, उस परमात्मा की भक्ति से ही जीव का छुटकारा होगा। अब क्या बताया है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभ का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभ का, भाई बिना भजन भय मिटे न जम का समझ बूझ रे भाई, सतगुर नाम दान जिन दीन्या ये संतों ठहराई, सत कबीर नाम करता का, ओह सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दल देवा, सुमन करे सुर से लापे पावे हर पद भेवा, आसन बंद पदम पद परचे ना भी नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पदम झलके जहां से ध्यान लगावे, सब सुख भुक्ता जीवित मुक्ता दुखदारी दर दूरी, ज्ञान धान गलतान हरि पद ज्यो कूरंग कस्तूरी, गजमोती हस्ती के मस्तिक उन्मन रहे दीवाना, खावन पीवे मंगल घूमे आठ बखत गलताना, ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलक से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक नमा था मोड़े, बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा, गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। अब कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, और बिना भजन भय मिटे नहीं जम का। अब जो पुण्यात्माएं पूर्व जन्म की अच्छे संस्कार युक्त हैं वो घर भी त्याग देते हैं परमात्मा के लिए, संतों की खोज करते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा सतगुरु बिना नहीं मिल सकता, गुरु बिना नहीं मिल सकता, तो गुरु की तलाश में निकलते हैं, उनको निरे नकली गुरु मिलते हैं, कोरा ज्ञान भर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद रोजी रोटी के लिए स्वयं भी वो एक को थोड़ा बहुत अलग से वेशभूषा बना लेते हैं, वो उल्टा सुल्टा ज्ञान बोलने की शैली ठीक करके वो और जनता को गुमराह करना शुरू कर देते हैं और संत बन बैठते हैं, लेकिन वो संत की परिभाषा से भी परिचित नहीं। बोली आत्मा चले थे भगवान प्राप्ति करने के लिए, भगवान मिले दास बनके और वो बन बैठे संत, गुरु सतगुरु चरण छुआन लाएंगे और लोग उनके चरण छुए, वो पाप के भागी बन गए। अब वो पुण्यात्मा यहां आते हैं, क्योंकि जो पुण्यात्मा होती है वो समय को चूक क्या नहीं करती, ज्ञान हो गया मनुष्य जीवन और परमात्मा के लिए घर से निकले, घर भी त्याग गया, अब वो परमात्मा मिलने जा रहा है, तो फिर उनसे ये कहा जाता है कि आप ये दाढ़ी दो वेशभूषा दाढ़ी शीस के केस दाढ़ी कटवाना कोई अनिवार्य नहीं है भक्ति में, चाहे न कटवाओ चाहे रखवाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने एक विशेष वेशभूषा बना ली साधु की संत की और भोली आत्मा उनके पीछे लगी, और जब तक वो उसको उस वेशभूषा को कटाकर सिंपल मैन नहीं बनेंगे उनकी वह मरोड़ ना जा, वो कुबद का गढ़ ना टूटे, क्योंकि भगवान मिलेगा दास बनने से। और साधु बना रहा नमस्कार करनी भोली आत्मा बहुत मिलेंगी, क्योंकि नकली हो चाहे असली उनको क्या पहचानी, उस संत नकली है का असली है, उसको तो भगवान का रूप दिखाई देता संत श्रद्धालु को। तो फिर वो जो संत वेशभूषा बना के बोली जनता में एक प्रभुता पाते हैं, उनको हम समझाते हैं कि आप ये ऐसा मत रखो, ये आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो बेचारे क्योंकि वो भगवान से अपरिचित हैं, भगवान की महिमा से वो परिचित नहीं है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं दाढ़ी कटवा लेंगे ना फिर हमें रोटी कहां से मिलेगी, वो तेरा गजब भैयो। और हम जैसे ट्रेन में जाते हैं तो हमारी टिकट नहीं लगती, हमारा गुजारा कैसे होगा। अब ये भी हमारी एक भगवान के विधान से अपरिचित होने की सोच है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब आप मेरी शरण में आ जाओगे रोजी और रोटी की तो चिंता छोड़ देना। जब तीनों लोकों में प्रवेश करके वो सबका दहन पोषण करता है तो हम उसी से सीधे संपर्क में आ गए तो क्या हमें दो रोटी नहीं देगा, क्या आने जाने का किराया वो नहीं देगा, ना जाने कित के दे देगा, सत्कर्मा लेना। अब आपके समक्ष पीछे सत्संग में एक नेपाल से भक्त आया था, उसने कहा था जी वहां के गरीब जनता है और वहां से आने में असमर्थ है, और वहां प्रचार करने के लिए मैं भी इतना समर्थ नहीं हूं, अभी घना प्रचार कर सकूं, जितनी मेरी समर्थता है उतना तो मैं पैसा लगा के खर्च कर दूंगा। फिर हमने उसको 5,000 रुपये दे दिए, भाई तू वहां जनता में प्रचार कर। तो उस बेचारे ने रख दिए वह पैसे कि भाई परमात्मा का पैसा मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, कति आंट लग गएगी ना कितना भी पार नहीं बसाओगी तब उसको प्रयोग करूंगा। तो महीना तो उसने ऐसे काम करता रहा, अपने आप अपने ही पैसे से वो खर्च करता रहा, प्रचार करता रहा जैसा बना। फिर उसको आवश्यकता बन गई, 500 रुपये की आवश्यकता पड़गी। कहता मैंने वो 5,000 रुपये नो के नो दर रखे थे, 1,000-1,000 के नोट और 2 500-500 के, 4,000-1,000 के, कति गिण के वहां ऐसे स्थान पर रख देखते बच्चे भी ना छेड़े, घरवालों को पता ही ना चले वहां कभी पैसा मैंने रखा ही नहीं। तो वो गिने तो मैंने पाए वो क्या 2,500 रुपये बढ़ गए, साढ़े हाँ उसमें कहता मैंने पहले 1,000 रुपये निकाल लिए थे तो 6,500 रुपये फिर पाए, 2,500 रुपये टोटल कहता वो बढ़ गए, 1,000 निकाल लिया था 4,000 उसने सुरक्षित रख दिया, फिर 6,500 पाए। तो ये किसने दे दिए, कबीर परमात्मा ने। अब वो 2,500 रुपये उसके यहां आने और जाने में एक साल में खर्च ना हो, और ये तो 2,500 है, वो 2,500 है, 2,50,000,000 दे दे परमात्मा, न्यू के न्यू दर दे बंडल बांध गए और किसी प्रेस से मिला लियो जो उसमें चूक पा जाता है, तो भगवान उसी को कहते हैं। तो हम कमजोर सोच के हो गए क्योंकि हमें भगवान मिला को नहीं, और भगवान ना मिलने से हम अन्य अटकलों से ही अपना गुजारा समझकर फिर भी साधु बन रहे। वो जब आप पे पेट नहीं भरता और नके दोगे तुम, तो ऐसी भूल पड़ जाती है। अब परमात्मा कहते हैं उनके उनके लिए जो परमात्मा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा उनको प्रभु के गुण उनको मिले नहीं, क्या बताते हैं कि टूका कारण फिरे कूकरा सत्तर घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा बिरद लजावे, नट प्रेरणा कांदर सासी मांगत हैं भटियारे, जिनकी तारी लगी हरी में वो मोती देवे उधारे। अपरमात्मा क्या बताते हैं कि जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना वो किस प्रकार दुखी रहे, मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नगसीपन सायर वो निर्मल आनंद कंदरे मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नगसीपन सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। अब कितनी प्यारी वाणी बोली है गरीबदास साहेब ने अपने कबीर परमात्मा के विषय में। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैण चम इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि जिनको तुम विद्वान समझा करते बड़े वेदों के ज्ञाता हैं बड़े मर्मज ज्ञाता हैं। अब जैसे आपने अभी देवी भागवत महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 414 पे छठे सकंद में क्या पढ़ा कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। 562 पृष्ठ पर दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए उसके अतिरिक्त दूसरे की धारणा भी नहीं लानी चाहिए उसकी पूजा करो वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है पुनर्वृत्ति में है ये भी स्थाई नहीं। अब यहां परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे। अंध माने अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन इनको अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इसलिए अंधे थे सब। अब दुर्गा भी अंधी पूर्ण ज्ञान नहीं वो कभी ब्रह्म तक ही बताती है उसकी पूजा करो। भाई दिखत के तो नैण चम इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब दुर्गा कभी कहती अक्षर ब्रह्म वो ब्रह्म जिसने सारी सृष्टि रची वो अक्षर ब्रह्म है और फिर कह उस ब्रह्म की पूजा करो उसका ओम मंत्र है परवण मंत्र है। तो इन सब के मोतिया बंद था। मोतिया बंद कैसा होता है जैसे सफेद मोतिया हो जाए किसी के आंखों में उनकी आंख इतनी स्वस्थ दिखाई देती है जैसे कति सारा दिखता हो लेकिन उन्हें दिखता कुछ को नहीं कति नपटन दे होते वो। तो ऐसे ही विद्वान भगवान देवी और देवता हमने कति भगवान प्राप्त दिखाई दे थे और बड़े विद्वान नजर आवे थे इनको तो कैक है भी ना ज्ञान था। अब जैसे अभी तक हमारे ही पवित्र हिंदू धर्म के ये गुरु दे लोग हमें ये नहीं बता सके कि पुराणों में क्या लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है तो ये आख्याले कैसे कह सकते। तो अंधे थे अंधे विन ज्ञान नेत्रहीन इनको ये भी ना समझ में आई गीता पवित्र गीता जी और पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण हमें क्या संदेश यथार्थ संदेश दे रहे और पुराणों के वक्ता ब्रह्मा जी ये आप अज्ञान दे रहे में। इसलिए बताते हैं मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नगसीपन सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंदरे दिखत के तो नैण चम इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो आंख बड़ी निर्मल दिखाई दे बड़े विद्वान नजर आवे हैं पर इनके अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा है। नर नारायण देही पाके जग कट्याना यम का फंदरे रतन अमोली दर्शत नाही दिक है वाकी जिंदरे। कि ऐसा सुंदर शरीर पर आप पाके और फिर भी भगवान नहीं मिले और कहते हैं वो परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ तो धिक्कार है उसके जिंदगी ने इस मनुष्य जीवन को। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करें गोविंदरे भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। अब जिनके सच ये ज्ञान समझ में आ गया और सच्चे दिल तो भक्ति में लौ लाएगी कहते फिर यहां का सुरपति देवताओं के राजा इंद्र की पदवी भी हमारे लिए व्यर्थ है वो भी हम वो क्या कर है सुरपति इंद्रे। यानी उसके सामने वो सुख देवताओं के राजा इंद्र का भी व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि जैसे वैसे तो इंद्र को बहुत सुख है, देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन यू राज रहेगा कितने दिन? यू ज्यादा समय नहीं रहे, इसका फिक्स टाइम है। 72 चौकड़ी युग इंद्र, एक इंद्र 72 चौकड़ी युग तक शासन करता है, 72 चतुर्युग तक, और एक ब्रह्मा के दिन में 14 इंद्र अपना शासन पूरा कर लेते हैं, इसलिए 1008 चतुर्युग होते हैं। तो 72 चतुर्युग जब ये ब्रह्मा इंद्र पूरा कर लेगा, और इसने अपने ही तप और अपने ही यज्ञों से उस इंद्र का राज को प्राप्त किया, मृत्यु को प्राप्त होगा 72 चतुर्युगी तक राज करके, 72 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चतुर्युग, इसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं एक चतुर्युग में, और ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक जीवात्मा इंद्र की पदवी प्राप्त करके स्वर्ग का राज भोगती है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर गधे की योनि प्राप्त करता, शटार्ड उसकी 84,00,000 योनियों का गधे से होता है। अब के फूक के इसे इंद्र के राज ने आग लगा जो फिर गधा बन गया, बताओ के काम आया वो सुख, अब पाड़ टूट गया, अब फिर इसे इसे गधे के जो जीवन हो जा मनमाने, जैसे महावीर जैन अली आत्मा के 60 करोड़ बार गदारत तरह गजब हुए, 30 करोड़ बार कुत्ता, देवताओं के राजा वाला सुख के काम आया उसके, नो भगवान याद दिलाऊंगे फिर हमारा दिल यहां से हट जाएगा। क्या बताते हैं भाई? पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे, इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, ग्रीवदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। कि देखो भक्ति करोगे आपका काम आवेगी, यहां भी सुख मिलेगा, और यहां से भक्ति करके जाओगे तो कहते आपकी कीर्ति बनी रहेगी जब लग सूरज चंद्रे, यानी आप सतलोक चले जाओगे वहां आपको, यहां लोग आपके गुण गाया करेंगे, जैसे द्रुव, प्रह्लाद, मीराबाई आदि पुण्यात्माओं को आज तक याद किया जाता है, और वो अपनी भक्ति करके बेड़ा पार करके हम उनके गुण गावें। तो ऐसे ही हम अपना कर्म बनावेंगे, सतलोक चले जाएंगे, और पीछे आने वाले आप जी के गुण गाया करेंगे, बड़े अच्छे भगत थे और वह तो बेड़ा पार करके। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, निर्द्वंद माने और सब सब तरफ से ध्यान हटा के अपने मालिक के चरणों में लगे रहे, काम जो अपना पेट रोजगार निर्वाह के लिए धंधा करे उसमें भी मालिक को भूल नहीं पड़न दे, उसको कहते निर्द्वंद भजन करना। और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे, अपने आत्मा कबीर परमेश्वर जी अपने तत्व ज्ञान को आप ही बताने आए थे, आते रहते हैं, और फिर हमारे जैसे दास की सेवा लगा देते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराने के लिए। अभी तक हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बताया गया था कि अजर अमर हैं, सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि के रचनहार हैं, और ये पूर्ण परमात्मा है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता यही हैं। अब इनकी यथार्थता हमारे सामने आ गई, कहां से पता चला? इन्हीं की जीवनी से, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी किन में है? पुराणों में। अब आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये सत्संग स्थल जो है एक ऐसा सामूहिक स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बालक भी, आम बच्चे भी होते हैं, यानी श्रोता है, और दूसरी कक्षा के भी, यानी कुछ ऐसे हैं जो पहली बार सत्संग सुनने आए हैं, हमारे भगतों ने समझा बुझा के लाओ एक बार चल लो आप हमारे गुरुजी का सत्संग तो सुन लो, नाम ना लियो पर ज्ञान तो सुन लो। तो उनके लिए भी हमने ये कह ख सारे सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक भक्ति मार्ग का कह ख भी ज्ञान नहीं किसी को। तो इस दास ने स्टार्ट से लेकर और लास्ट तक की पढ़ाई नए सिरे से करानी पड़ेगी आपकी। और पुण्यात्मा इस दास को तो परमात्मा ने मजदूरी दी है या अनमोल दे रखी है, और इस दास को उसी दिन से ये एहसास हो गया था कि परमात्मा ये शरीर भी तेरे काम आ जाए, इस टुकड़े टुकड़े भी मालिक आपके काम आ जाए, मेरी मिट्टी सफल हो जाएगी। तो इस दास ने जब से ज्ञान हुआ है उसी दिन से दिन और रात एक कर रखा है। अब आप देखते हो 13-13, 14 घंटे पहले सत्संग करता हूं, फिर आप जी से मिलता हूं, और फिर और आश्रम की भी जो व्यवस्था करनी होती है आप जी के लिए वह भी करता है दास, और कितना 12 बजे 1 बजे जाकर सोने का समय मिलता है, फिर भक्ति उठकर फिर। तो ऐसे ही जब से इस मार्ग का दास को एहसास हुआ है, प्राप्ति हुई, आदेश हुआ है, उसी दिन से ये बरसक प्रयत्न और ये परिश्रम दास का चल रहा है, और ये सफल हो गया प्रभु की कृपा से। तो इसलिए दास जरा सी भी आलस नहीं करता कि परमात्मा फिर नाराज हो गया ना, फिर मेरा पिल्ला कुछ नहीं रहेगा। तो हर तरह हर मर्यादा में रहता हुआ, हर पॉइंटों से बचता हुआ परमात्मा के गुणगान करता हूं। तो यहां ये ऐसा है कि पहली कला कक्षा से लेकर लास्ट तक ये नए सिरे नई पढ़ाई पढ़ानी, क्योंकि पहले ज्ञान से विपरीत है सारी, और इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी दास ने, क्योंकि बार बार रह रहकर प्रमाण ना दिखाऊंगा तो कुछ भी पल्ला ना पड़े आपके, आपका ये 2 घंटे व्यर्थ जाएंगे जिसको नए सिरे से नहीं बताया जाता। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर आश्रित हैं, अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है। अब देखिएगा देवी पुराण, अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जन्म, इनके माता पिता कौन है, थोड़ा सा विस्तृत दिखाएंगे। और जो पुण्यात्मा पहली बार आए हैं या बार बार जो, क्योंकि ये ज्ञान एकदम समझ में नहीं आता, आप कम से कम भी 1 वर्ष तक लगातार सत्संग सुनोगे जब आपकी बुद्धि विशाल बनेगी, और उसके लिए बार बार ये लेक्चर अर्थात ये सत्संग करने अति आवश्यक होगी। अब अभी तक हमें परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास ये जग बोराना, बोराना मन विचलित है और कोई न जाने पद निर्वाणा, मोक्ष मार्ग का किसी ने ज्ञान नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा, अब मैं तुमसे कहूं यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, इस तीनों देवताओं की उत्पत्ति भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये शब्द बताए थे, और वो ज्ञान जो पुराणों में लिखा था वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोला था, और क्या बताया था कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। अब बुद्धिमान होगा वो तो समझेगा कि संत जो बता रहा सच्चाई है, और प्रमाण दिए जाएंगे साथ में आपको, और अनजान व्यक्ति जिसने भगवान चाहिए कोई ना वो समझे कोई नहीं इस मार्ग में, वो तो काल का ही जो है ना आहार बना रहेगा। अब क्या कहते हैं, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भ्रम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गौराई सब संशय तुमरे मिट जाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई ही मूर्ख सुने तो गम ना पाई, समझदार सुनेंगे तो तुरंत स्वीकार करेंगे सीने से लगाएंगे इस ज्ञान को कि महाराज जी ने तोड़ पाड़ दिया कमाल कर दिया, और साथ में ये आपको सदग्रंथ दिखाऊंगा फिर संशय नहीं रहेगा कि ये कच्चा काम है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो समझ में न आई, मां अष्टंगी पिता निरंजन ये दम जारण वंशन अंजन पहले की निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अतिशोभा देव निरंजन तन मन लोभा काम देव धर्म राय सताए देवी को तुरंदर खाए। पेट से देवी करी पुकारा हे साहेब मेरा करो उभारा टेर सुनी तब ता हम आए अष्टंगी को बंद छुड़वायो। धर्मराय को हिकमत कीना नक्श रेखा से भग कर लीना धर्मराय कीने भोग विलासा माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। परमेश्वरे बंदी छोड़े 600 साल पहले परमात्मा ये भगवान थे भगवानों के भगवान थे कबीर जी जिन पुराणों को हमारे ब्राह्मण गुरु और ऋषि नहीं समझ सके इनमें के लिखा परमात्मा ने पहले ही बोल रखा अपनी सिंपल लैंग्वेज में। कहते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई तीन देवों की उत्पत्ति भाई माँ अष्टंगी पिता निरंजन। इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका ज्योति निरंजन युग काल है। और कहते हैं तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बताया और फिर गुण तीनों की भक्ति में रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार सभी भूल रहे हैं और कह कबीर निज नाम बिना क्यों कर उतरोगे पार उस सार नाम बिना तुम पार नहीं हो पाओगे। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों ने गुरुओं ने और इन विवेकहीन ऋषियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को दबा दिया ऊपर नहीं आने दिया और आज इन सदग्रंथों ने इसको सेकंड किया समर्थन किया फिर हमारे हृदय ने स्वीकार किया। अब देखो ये श्री शिव पुराण ये कहां से छपा है श्री शिव पुराण इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक और मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके रुद्र संहिता से हम प्रारंभ करेंगे। परमात्मा की वाणी अब कैसे कितनी किस प्रकार से धोती अब देखिएगा। यह रुद्र संहिता और प्रश्न नंबर 99। अब 98 से शुरू करते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन अपने पुत्र नारद से बता रहा है ब्रह्मा ब्रह्मन देव श्रोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। के पूछा था कि सृष्टि की रचना किसने की जिसने समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा अन्य ग्रह अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था न दिन होता था न रात अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म अब तत् सद ब्रह्म माने वो सच्चा सत्पुरुष ब्रह्म तत् सद ब्रह्म वह सत्पुरुष यानी सद ब्रह्म सच्चा भगवान इस श्रुति से जो सत सुना जाता है वह एकमात्र वही शेष था। अब चलो 100 पृष्ठ नंबर पे जिस परब्रह्म के विषय में अब देखो ब्रह्मा जी बोल रहा कि तो ब्रह्म कह है कि तो सद्ब्रह्म कह कि तो परब्रह्म फिर भी क्योंकि इन्हीं से हमने इस ज्ञान को निखारना है जो परमेश्वर का ज्ञान है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्व ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किया जाता है। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने शरीर की, साकार शरीर की। जो मूर्ति रहित यानी शरीर रहित पर परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं, ब्रह्मा बोल रहा है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब देखो, उस प्राशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति का अंबिका कही गई है, दुर्गा। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की मां, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जननी और नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये दुर्गा है। अब इसको प्रकृति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, प्रकृति शब्द आपका गीता जी में काम आओगे, 14वें अध्याय में आपको दिखाऊंगा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति इसी दुर्गा से और काल से। काल ने गीता बोली। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे तीन रूप धारण किए थे ब्रह्मा विष्णु महेश को, एक एक किसने आगे अन्य लड़कियां दे दी थी, अपने से तीन और बना के। वे जो सदाशिव हैं, अब काल के विषय में लिखा है सदाशिव, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म लगाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। अब देखो, काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन है, यही सदाशिव महाशिव महाब्रह्मा मां विष्णु का रूप धारण करता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं साथ, शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। ये दोनों के दोनों, ब्रह्मा और ये काल और दुर्गा, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखो, देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सविच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया और वहां से एक बालक की उत्पत्ति, उसका नाम क्या है? 102 पृष्ठ पे रुद्र संहिता शिव पुराण। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चय कीजिए, कौन काम और काम बताइए। ये सुनकर शिव ने कहा, वत्स बेटा, आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। यानी उस विष्णु नाम दर दिया। अब क्या प्रमाण हो गया कि दुर्गा और काल से, प्रकृति और इस काल ब्रह्म से विष्णु की उत्पत्ति हुई, ये इनका बेटा। अब ब्रह्मा कहता है, देखो रुद्र संहिता का ये छठा अध्याय यहां समाप्त हो जाता है, अब यहां सातवां प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति के बाद कल्याणकारी परमेश्वर श्याम सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, दुर्गा और उनके संयोग से मुझे दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहां अनुवादकर्ता ने अपनी सोच से थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। अब उसने आगे विष्णु कहते हैं शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं ऐसे ऐसे तो, लेकिन ये स्पष्ट हो गया। आगे देखो ये चार सिद्ध करने हमने, ये काल अलग, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग, ये देखिएगा 110 पृष्ठ पे नौवां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये चार हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये महेश कवच है। परंतु शिव ये काल इनसे न्यारा है, गुण इन तीनों गुणों से अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश और चौथा ये इनका पिता काल है, ये सदाशिव भी कहलाता है, इसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। यही विष्णु रूप धारण कर लेता है तो महाविष्णु कहलाता है, ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है तो महाब्रह्मा कहते हैं इसको। अब आपको एक और दिखाते हैं शिव पुराण में, क्योंकि ये चार सिद्ध करने हैं, ये काल अलग और ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग, तब ये कहानी समझ में आएगी जो परमात्मा ने हमें बताई है। ये देखिएगा शिव पुराण, शिव महापुराण, ये है श्री शिव महापुराण और खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई, जवाला प्रसाद मिश्र कृत, इसकी हिंदी टीका सहित। अब देखिएगा विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 17 पे। अब ये काल क्या कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 17 पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 में। मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सथम और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर इस रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। ये काल बोल रहा है सदाशिव, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है ये काल सदाशिव, तुमने तो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया, अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब आगे देखो, अब ये काल कहता है उन 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 में, हे पुत्रो विष्णु और ब्रह्मा को, हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जिसकी जो कि सृष्टि की उत्पत्ति, ये ब्रह्मा को उत्पत्ति दी और पालन कहता है विष्णु को पालन का, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। जो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया है। अब ये स्पष्ट हो गया, ये चार इसमें पांच लिख दिए, ये 11 रुद्र और अन्य भी हैं, और इस काल के बेटे को भी रुद्र बोल देते हैं। जैसे आपने अभी शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में सुना था कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, वहां रुद्र इस महेश के विषय में है।